नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सवसाहूणम् जेणिह कसाय पाहुड मणेयणय मुज्जलम् अनन्तथम् गाहाहि विवरियं तं गुणहर भडारयं वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दूसरी पुस्तक जो दूसरा अर्थाधिकार प्रकृति विभक्ति जिसका नाम है, उसमें मूल प्रकृति विभक्ति की बात हमने देखी है और यहाँ उत्तर प्रकृति विभक्ति की बात चलती है। कर्मों के जो आठ कर्म जो है उसको मूल प्रकृति कहते हैं और प्रत्येक कर्म के जो भेद है उसको उत्तर प्रकृति कहते हैं, उसकी अभी यहाँ चर्चा चलेगी। यहाँ मोहनीय की ही बात चल रही है पूरे जयधोला में, ये तो क्योंकि पेज दोष हमने देखा था ना, कषाय पाहुड़ जो है उसमें मोहनी की अपेक्षा से ही बात चलेगी। अन्य ज्ञानावरणादि कर्मों की बात यहाँ नहीं बता रहे हैं। तो ये जो मोहनीय कर्म की जो मूल प्रकृति है उसकी सत्ता कहाँ होती है उसको विभक्ति कहा था, और उसकी सत्ता जहाँ नहीं है ऐसे 12वें 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती और सिद्ध भगवान को हमने कहा था मोह की अविभक्ति वाले या मोह विभक्ति से रहित जीव ऐसा कहा था। ये तो मोहनीय कर्म कहा उसकी अपेक्षा से, मूल प्रकृति की अपेक्षा से कहा था। 11वें गुणस्थान तक तो मूल प्रकृति की सत्ता है मोहनीय की, 12वें 13वें 14वें और सिद्धों को नहीं है। अब यहाँ उत्तर प्रकृतियों की बात चलेगी। मोहनीय की उत्तर प्रकृति कौन कौन सी है, पहले दो मूल भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में भी तीन होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी के चार, अप्रत्याख्यान आवरण के चार, प्रत्याख्यान आवरण के चार और संज्वलन के चार। कौन से चार? क्रोध, मान, माया और लोभ। और जो नव नौकषाय कर्म जिसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति की बात चल रही ना, जीव के भावों के नाम और कर्मों के नाम वे ही है, तो वे कौन से है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद। तभी इन उत्तर प्रकृतियों की यहाँ बात चलेगी, तो उनको अलग अलग पद्धति से यहाँ समझाएंगे। इसको कहा यहाँ अनुयोग द्वार। तो चूर्णी सूत्रकार ने तो 11 अनुयोग द्वार बताए, अनुयोग द्वार ने इतने हेडिंग्स के अंदर उनको समझाएंगे। अब यहाँ जो उच्चारणाचार्य ने उस पर जो खुलासेवार ज्यादा उन्होंने लिखा था जिसको उच्चारणा कहते हैं, तो उन्होंने उसमें से 24 अनुयोग द्वार बनाए, 24 अलग अलग पद्धति से इन्हीं उत्तर प्रकृतियों को समझाएंगे। वह बात अभी हम 83 पृष्ठ से पढ़ने जा रहे हैं, 83, क्योंकि वहां पूछा गया था, शंका पूछी थी कि पहले तो गुणधर भट्टारक ने तो चूर्णी सूत्रकार ने तो 11 अनुयोग द्वार बताए हैं और यहाँ 24, ऐसा क्यों? तो कहते मंद बुद्धियों को समझाने के लिए, हमारे जैसे। तो वो अभी समझा रहे हैं यहाँ से 83 पृष्ठ से। अब यहाँ ओघ समुत्कीर्तना, समुत्कीर्तना नाम का पहला अधिकार है। समुत्कीर्तना का अर्थ होता है उसका अस्तित्व बताना, ये इतना ही बताएंगे। ओघ यानी सामान्य और आदेश यानी विशेष, जनरल स्टेटमेंट उसको कहेंगे ओघ से। और अधिक विस्तार से मार्गणाओं में बताएंगे, गति मार्गणा की अपेक्षा नरकों में, देवों में, उसको कहेंगे आदेश से ओग समुत्कीर्तना और आदेश समुत्कीर्तना, यानी सामान्य उसका अस्तित्व बताना और विशेष से बताना। इस प्रकार समुत्कीर्तना अनुयोग द्वारा, यानी समुत्कीर्तना नाम का जो चैप्टर है उसमें जो कुछ अधिकार है वह दो प्रकार का है। यानी पहले में पहले मोहनीय के उत्तर प्रकृतियों का अस्तित्व बताएंगे, तो सामान्य में कहेंगे कहाँ क्या है, और फिर मार्गणाओं में यानी गतियों में इंद्रियों की अपेक्षा काय की अपेक्षा अलग अलग बताएंगे। इनमें से ओघ की अपेक्षा यानी सामान्य की कथन करने पर हमने अभी जो प्रकृतियों के नाम गिनाएंगे तो वो कहेंगे वो प्रकृतियां होती है और नहीं भी होती, ये सामान्य कथन होगा। यानी उसके अस्तित्व वाले भी जीव है और उससे रहित भी जीव है, ये पहले में पहले सामान्य कथन होगा। तो अभी ये सारे प्रकृतियों के नाम गिनाए हैं, सम्यक्त्व मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, यानी सम्यक प्रकृति जिसको हम कहते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दर्शन मोहिनी के तीन भेद। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुसक वेद, हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा। मोह की इन 28 प्रकृतियों की, ये जो 28 प्रकृतियां है उनके विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव है, इतना बता दिया। तो 28 प्रकृतियां है मोहनीय की, तो कितने ही जीव इनकी सत्ता वाले है, कितने ही इनसे रहित है, ये दो ये सामान्य कथन हुआ। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक अर्थात सामान्य, उसके बाद कॉमा लगाना, पर्याप्त और मनुष्यनी, मनुष्यों के कितने भेद हमने देखे थे अभी तक मनुष्य गति में, मनुष्यों के भेद चार, कौन से, सामान्य जिसमें पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है, मनुष्यनी भी है, सभी तीनों वेद वाले हैं। तो एक तो सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी यानी भाव वेद, भाव स्त्री वेद वाले, और लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, ऐसे चार भेद हैं। उसमें से सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी, ये तीन प्रकार के मनुष्य, इनमें क्या बताने जा रहे हैं, उनमें भी इन 28 की सत्ता वाले जीव है और इनसे रहित भी जीव है, जिसको कहते हैं इन 28 प्रकृतियों के विभक्ति वाले जीव भी है और अविभक्ति वाले भी जीव है, क्योंकि उनसे रहित वाले जीव मनुष्यों में ही पाए जाएंगे। तो जब गतियों की अपेक्षा कहेंगे तो मनुष्यों में पाए जाएंगे ऐसा कहेंगे। अन्य कौन कौन सी मार्गणाओं में पाए जाएंगे उसकी अभी लिस्ट बता रहे हैं, ये जहां जहां ये मनुष्य जिस मार्गणा में इंक्लूडेड है, गर्भित है, उन सभी मार्गणाओं को बताएंगे। मनुष्यों में ही ये बात हो सकती है, देव नार की तिर्यंचों में नहीं होगी। देव नार की तिर्यंचों में 28 की सत्ता वाले तो है परंतु बिना सत्ता वाले नहीं है, 28 सबके सब लेना है। तो यहां बता रहे पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि पंचेंद्रियों में विभक्ति वाले भी है अविभक्ति वाले भी, जब कहेंगे तो वहां तो मनुष्य की अपेक्षा कहेंगे। वैसे ही त्रसकायिक, त्रसकायिक पर्याप्त, त्रसकायिक अपर्याप्तों को नहीं लिया क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विभक्ति वाले अविभक्ति वाले दोनों संभव नहीं है। पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी, जब पांचों वचन योगी या मनोयोगी कहते हैं, कौन कौन से लक्ष्मी बहन, पांच मनो, हाँ एक सामान्य की जिसमें सभी भेद गर्भित है या कोई भी भेद होते तो वो सामान्य कहेंगे। जैसे जब हम कर्म कहेंगे तो सामान्य से कर्म एक शब्द आया, और उसके भेद कहेंगे तो 8 कर्म होते हैं, तो यहाँ सामान्य को भी अलग भेद में गिनाया। हाँ फिर हाँ सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ऐसे ही वचन योग के भी पांच प्रकार होते हैं। तो पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, जब पांचों मनोयोगी या वचन योगी कहते हैं, उनमें 28 की सत्ता वाले भी है और बिना सत्ता वाले भी है। तो बिना सत्ता वाले ऐसे मनोयोगी जीव कौन से? पांच मनोयोगी, हाँ, 12वें गुण स्थान वाले। इस तरह से हमें सोचना है, हमें केवल लिस्ट नहीं पढ़ना। फिर सामान्य काय योगी, कौन सा काय योग है इसका भेद किए बिना, और भेद करना है तो औदारिक काय योगियों में है घटित होगा, क्योंकि औदारिक काय योग होते हुए विभक्ति वाले तो सभी पर्यायों में पाए जाते ही है 11वें गुणस्थान तक, और अविभक्ति वाले, औदारिक काय योगी और अविभक्ति वाले, जिनके मोहनी की सत्ता नहीं है एक भी प्रकृति की, 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान और हाँ बोले बताएंगे। पहले औदारिक काय योग की बात चल रही है, 12 और 13वां, क्योंकि 14वें वाले को योग नहीं है। अब औदारिक मिश्र काय योगी को भी लिया आगे, क्योंकि वे भी औदारिक मिश्र अन्य जीवों को तो है ना, जब हम पर्याप्ति पूरी नहीं होती दूसरी शरीर पर्याप्ति, तब सभी तीर्यंच और मनुष्यों को यह औदारिक मिश्र का योग, वो विभक्ति वाले होंगे। और औदारिक मिश्र केवली समुदात में, कपाट समुदात अवस्था में एक समय के लिए औदारिक मिश्र का योग है, और वहां मुनि की सत्ता नहीं है। कारमान का योगियों में अन्य जीवों को विग्रह गति में कारमान का योग होते हुए वहां विभक्ति हुए है, और केवली समुदात में प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में उससे रहित है, इसलिए उसको सहित और रहित दोनों विकल्प इसमें हो सकते हैं। इसी प्रकार मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, 12वें गुणस्थान तक ये चारों ज्ञान है, तो 11वें तक तो विभक्ति वाले कहेंगे और आगे 12वें में विभक्ति से रहित अविभक्ति वाले। संयत जब कहेंगे तो 6ठे से लेकर सभी 14वें तक संयत है, तो 6ठे से 11वें तक तो विभक्ति वाले कहेंगे और 12वें 13वें 14वें वाले अविभक्ति वाले कहेंगे। चक्षु दर्शनी अचक्षु दर्शनी में भी ऐसा ही है, अवधि दर्शनी 12वें तक ये होते हैं, शुक्ल लेशा वाले हाँ 13वें तक हाँ, और बाकी जो नीचे के गुणस्थानों वाले वो विभक्ति वाले। भव्य जीव, भव्य कौन से गुणस्थान तक लेना? 14वें तक। सम्यक दृष्टि कहाँ तक लेना? सिद्धों को भी लेना, सिद्ध जो है वो मोहनीय से रहित है, यानी 12वें 13वें 14वें और सिद्ध ये मोहनीय से रहित है, और बाकी नीचे के मोहनी के सहित है। संगी 12वें में, क्योंकि 13वें वाले को संगी नहीं कहेंगे, वे संगी पंचेंद्रिय है, परंतु संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी उन्हें कहेंगे जो मन के द्वारा जानने का कार्य करते हैं। केवल ज्ञानी मन से जानते कि नहीं जानते? हाँ भानुबेन, नहीं जानते। उनको द्रव्य मन है कि भाव मन है? भाव मन है, द्रव्य मन नहीं। अच्छा, द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है। भाव मन है ना, मन के द्वारा जो क्षोभसम ज्ञान है ना, मन के द्वारा जानने का जो क्षोभसम ज्ञान है उसको भाव मन कहते हैं। वो मन से नहीं जानते, केवल ज्ञान से जान रहे हैं, अभी उनके इंद्रिया मन का अवलंबन नहीं है। जैसे द्रव्येंद्रिया पड़ी है वहां पर, क्योंकि हम तो देखते हैं तीर्थंकर है। अभी उनके आंख नाक सब है ना, वो मुनिराज अवस्था में है, वो तो उनके तो द्रव्येंद्रिया है, परंतु इंद्रियों के द्वारा जानते नहीं है। वैसे ही मन जो है, जड़ मन, द्रव्य मन वो तो है, परंतु उसके द्वारा जानने का कार्य नहीं हो रहा। आहारक अनाहारक, आहारक यानी ये नौ कर्म वर्गणा का ग्रहण, उसको आहारक कहते हैं। तो आहारकों में विभक्ति वाले तो समझ सकते हैं नीचे के सभी गुणस्थानों में, और आहारक होते हुए भी अविभक्ति वाले। बोलो, अकेला 13वां लेना क्या? 12वां आहारक की बात चल रही, अनाहारक की नहीं, आहारक की। हाँ, विभक्ति है, वो तो हम मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं। अभी 28 की कहाँ है वो बात बताएंगे बाद में, 28 की कहाँ होती है, 27 की कहाँ होती है, 26 की कहाँ, वो बाद में बताएंगे। अभी तो सभी कहाँ पर है उसकी बात चल रही है। अनाहारक जीव अन्य अनाहारक तो विग्रह गति में होते हैं, और कहाँ होते हैं? केवली समुदात में, और चौदवे, और सिद्ध भगवान विशेषार्थ। अभी इसी को समझा रहे, मार्गणा स्थानों की विवक्षा न करके, मार्गणा स्थान यानी गति, इंद्रिय का योग वगैरह जो मार्गणाएं हैं, यदि उनकी विवक्षा उनकी अपेक्षा से भेद नहीं करेंगे तो सामान्य से, सामान्य से के लिए क्या शब्द आया था, ओघ से, जीवों के मौन्य की सभी प्रकृतियों का पाया जाना और नहीं पाया जाना संभव है। अतः ये सभी लिया, यहाँ मूल प्रकृति में मोहनी की सत्ता है नहीं, इतनी बात की। अब यहाँ 28 की बात की है पहले में पहले, फिर कौन से कितने कर्मों की सत्ता कहाँ होती उसकी बात बाद में करेंगे। अतः इस प्ररूपणा को ओघ प्ररूपणा कहा है, प्ररूपणा यानी कथन, स्टेटमेंट, तो ये सामान्य कथन है, इसको ही ओघ प्ररूपणा कहते हैं। तथा ओघ प्ररूपणा के अनंतर, अनंतर यानी उसके पश्चात, मनुष्य त्रिक से लेकर, कौन से तीन प्रकार के मनुष्य लिए थे, सामान्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी, अनाहारक जीवों तक, अभी हमने जो ऊपर लिस्ट देखी थी, जो मार्गणा स्थान बतलाए हैं उनके भी मोनी मोह की समस्त प्रकृतियों का सद्भाव और अभाव, ऐसे ही मार्गणाएं ली कि जहां दोनों ही हो सकता है, सद्भाव भी और अभाव भी संभव है। अतः उनकी प्ररूपणा को ओघ के समान कहा है। जहां डिफरेंस है वहां वो अलग से बताएंगे, परंतु जहां जहां दोनों ही संभव है उनकी लिस्ट अभी बता दें। उसमें से जो नहीं कहे थे, ऐसे जैसे लब्धि अपर्याप्त मनुष्य को नहीं लिया था वहां पर, पंचेंद्रिय अपर्याप्त को नहीं लिया था, त्रस अपर्याप्त को नहीं लिया था, तो उनमें तो विभक्ति वाले हो गए, अविभक्ति वाले नहीं हो गए। इसलिए ऊपर की जो लिस्ट बताई उसमें ओघ के समान, क्या ओघ के समान है, विभक्ति वाले भी है और विभक्ति से रहित भी है। अब आदेश की अपेक्षा, यहाँ ये ओघ यानी सामान्य कथन, और जिन मार्गणाओं में सामान्य जैसा कथन है उसको बता चुके, अब जहां कोई डिफरेंस है वो बता रहे हैं। आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव है। अभी यहाँ हमको विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले इतना कथन करना है, तो इनमें ऐसा नहीं कह सकते कि 28 की विभक्ति वाले तो भले कह सकते हैं, परंतु 28 के अविभक्ति वाले नहीं हो सकते वहां पर। क्यों? नरकों में गुणस्थान कितने हैं? 4। तो नरकों में 4 गुणस्थान है, तो ऐसी प्रकृतियां ली है कि जिनके सत्ता वाले भी जीव है और उनके सत्ता से रहित भी जीव है। अब फिर ये लिस्ट पढ़ना कौन कौन सी है, मिथ्यात्व, अभी नए लोग इसको ट्राई करेंगे। हाँ, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, ये हो गई दर्शन मोहनी की, और अनंतानुबंधी चतुष्क, क्रोध मान माया लोभ, इनकी सत्ता वाले भी जीव है और इनसे रहित भी जीव है। बेन आपका कितना अभ्यास है मुझे मालूम नहीं, तो आप कह सकते ये इनसे रहित वाले जीव कौन होंगे नरक में, जिनके सत्ता में, अभी आप कहना दया बेन, बहुत अच्छा, क्षायिक सम्य दृष्टि, जिन्होंने इन प्रकृतियों का सत्ता में से पूरा नाश कर दिया है, मैं ख्याल में आता है ना, तो इसलिए इतनी प्रकृतियां ली, इसके आगे वाले का कुछ क्षय वहां पाया नहीं जाता है। तो क्षायिक सम्य दृष्टि चौथे गुणस्थान के कौन से नरक में हो गए, 7 नरकों में, पहले नरक में। हाँ, आपको कोई मालूम है अभी वहां? हाँ, वो तो क्षायिक सम्य दृष्टि नहीं है। हाँ, वो तो तीसरे नरक में है ना, वो वेदक सम्य दृष्टि है। हाँ, श्रेणिक राजा मालूम है ना आपको। हाँ, तो देखो यानी यहाँ क्या कह रहे, विभक्ति वाले भी है और बिना विभक्ति वाले भी, तथा इन 7 प्रकृतियों के अतिरिक्त, इनके अलावा अन्य जो 21 है, 21 प्रकृतियों के विभक्ति वाले ही जीव है, ही लगाया यानी बाकी जो है इनमें से अन्य कोई प्रकृति का नाश तो नहीं हो सकता, बाकी तो सभी इनसे सहित ही है। ये समझ में आई इतनी बात? तो आगे अलग अलग मार्गणाओं पे घटित करेंगे। तो पहले पृथ्वी के नारकी, अभी ऐसा ही स्टेटमेंट क्या कि इन सात प्रकृतियों के सत्ता सहित और सत्ता रहित, दूसरी भाषा में क्षायिक सम्य दृष्टि, क्षायिक सम्य दृष्टि सत्ता से रहित है और अन्य जो जीव है वो सत्ता से सहित है, ऐसा अन्य कहाँ कहाँ हो सकेगा, कौन कौन सी मार्गणाओं में? तो कहते पहले पृथ्वी के नारकी, पहले में पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके क्षय करते हैं और फिर तीनों की सत्ता नाश हो गई, तो उसको अनंतानुबंधी की कहाँ सत्ता रही? क्षायिक समय दृष्टि के सातों ही प्रकृतियों का क्षय हो चुका है, उसी को क्षायिक कहते हैं। क्षायिक का अर्थ ऐसा नहीं कि केवल तीन दर्शन मोहनी की गई है, दर्शन मोहनी के तीन जाने के पहले अनंतानुबंधी चली जाती है, ख्याल आया? तो सातों का ही उनके क्षय हो चुका है, तो ऐसा और कहाँ कहा है? तो जैसे सामान्य नारकी में कथन किया वैसे पहले पृथ्वी के नारकी, नीचे के पृथ्वियों में नरकों में ऐसा नहीं हो सकता। विसंयोजना रूप से उसका क्षय हो गया है, वो अकेले चार की है, यहाँ सातों की लेना है। सामान्य तिर्यंच, ये सामान्य तिर्यंच में जब कहेंगे सत्ता वाले और बिना सत्ता वाले, तो कौन से तिर्यंच लेना है? नहीं नहीं, तिर्यंचों में ये कैसे हो सकता है कि सातों का क्षय हो गया है? कैसे? पन तिर्यंच थोड़ा ही क्षय करेंगे, हाँ देखो ये क्षायिक कौन करता है? मनुष्य ही करता है। तो जिस जीव ने पहले सम्यक होने के पहले तिर्यंच आयु बांधी है, पहले क्यों बांधना? समय दर्शन होने के बाद ना नरकायु बनती है, मनुष्यों की बात चल रही है, ना तिर्यंच आयु बनती है ना मनुष्य आयु भी बनती है। मनुष्य सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन होने के बाद उसको देवायु ही बंधेगी। अब सम्यक होने से पहले मिथ्यात्व दशा में जिसने तिर्यंच आयु बांधी है, बाद में जिसके समय दर्शन हुआ और क्षायिक भी हुआ, वो जीव मरकर भोग भूमि का क्षायिक तिर्यंच हो गए ना, क्योंकि तिर्यंच आयु बांधी है तो तिर्यंच में जन्मेगा ही, भोग भूमि ही जाएंगे क्योंकि तिर्यंच आयु बांधी है, कहीं नहीं कि बाकी कहीं भी तिर्यंच समय दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं हो गए। हाँ, तिर्यंचों में क्षायिक सम्यक तो भोग भूमि में ही पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ भले भगवान के समोशरण में भी तिर्यंच क्यों न जाए, उनको क्षायिक नहीं होती, ये कर्म भूमि के मनुष्यों में ही वो बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है क्षायिकपने की। और फिर पूर्व में कोई आयु बांधी है तो चारों ही गति के वहाँ वहाँ जन्म ले सकता है, क्योंकि सम्यक के पहले वहाँ की आयु बांधी है। देव की कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि पहले बांधना या कुछ, क्योंकि बाद में तो बांधकर वहीं चला जाएगा, ख्याल आया ये बात? तो इसलिए सामान्य तिर्यंच लिया। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी यही एप्लीकेबल है, तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तों में भी है। फिर ये योनिमति तिर्यंच को क्यों छोड़ा प्रेरणा बिना, आप बताना? नहीं नहीं नहीं, क्षायिक मनुष्य जो है तो वो जैसे हमने तिर्यंचों में क्षायिक के साथ जन्मेगा ऐसा देखा भूगभूमि वाला, तो योनिमति तिर्यंच को क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि सम्यक्त्व के बाद तिर्यंच यानी स्त्री में उत्पन्न नहीं होगा, ना देव की स्त्री, ना मनुष्य की स्त्री, ना तिर्यंच की स्त्री। भाववेद की बात चल रही है, भाववेद भी कभी स्त्री नहीं होगा। सम्यक्त्व होने के बाद जब अन्य सम्यक्त्व के साथ अन्य भाव में चला जाता है तो कभी भी वो स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होगा, यानी कोई भी स्त्री सम्यक्त्व के साथ कभी नहीं होगी, उत्पन्न होगी बाद में वो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकती है, परंतु जन्म से कोई भी स्त्री सम्य दृष्टि नहीं हो सकती। स्त्री पर्याय में सम्यक्त्व होता है पांचवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ होता है, और जहां मनुष्यनी में 14 गुणस्थान बताए हैं वो भाव मनुष्यनी की अपेक्षा, जो द्रव्य से तो पुरुष ही होना चाहिए, बिल्कुल, ये बिल्कुल लिख लेना अपने हृदय पर, क्योंकि ये निर्णय हमें आवश्यक है, दूसरे को समझाने के लिए नहीं, अपना निर्णय होना चाहिए। हाँ, पुरुषों को भी निर्णय करना है इसके बारे में, तत्व के बारे में निर्णय कौन करेगा? जिसको सम्यक तो प्राप्त करना है उसको करना होगा। और पुरुष पर्याय तो गिने चुने भावों के लिए है। अपने को स्त्री और पुरुष मान कर बैठेंगे, हाँ, तो किसी को ही नहीं होगा। नहीं, इसलिए वो योनिमति तिर्यंच वाला आलाप कथन नहीं लिया, ना ही लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच का लिया। ख्याल आया? तिर्यंचों में किसको छोड़ा? सामान्य पांच भेद है तिर्यंच के, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त, योनिमति और लब्धि अपर्याप्त। उसमें से सामान्य तिर्यंच लिया, पंचेन्द्रिय तिर्यंच लिया, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त लिया, परंतु योनिमति को नहीं लिया और लब्धि अपर्याप्त को नहीं लिया। सम्यक तो होने के बाद वो क्षुद्र भव में कोई जीव नहीं जाएगा अपर्याप्त में। अब देवों की बात, सामान्य देव देवों में तो होते ही ना, यहाँ के क्षायिक होकर वहां गए हैं, तो सामान्य देव सौधर्म और ऐशान स्वर्ग से लेकर किसको छोड़ा? हाँ, भवनत्री को छोड़ा। क्यों? हाँ, तो क्यों, वहां कोई सम्यक्त के साथ उत्पन्न नहीं होता, यहाँ तो क्षायिक सम्यक्त की बात है, क्षायिक की बात है, वेदक के साथ भी कोई नहीं उत्पन्न होता, यहाँ तो क्षायिक की बात चल रही है। वहां जाने के बाद भले वो वेदक सम्य दृष्टि या प्रथम उपशम हो सकते हैं, परंतु यहाँ किस जीव की बात चल रही है? क्षायिक। क्यों? क्योंकि वो 28 की सत्ता, ये 28 नहीं, 7 की सत्ता वाला और बिना सत्ता वाला लेना है, तो इसलिए सौधर्म ऐशान स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव। फिर अभी योग में बता रहे वैक्रिय का योगी, जो क्षायिक समय दृष्टि है इसे वैक्रिय का योगी लिए, वैक्रिय मिश्र का योगी, मिश्र में लेना कि नहीं लेना? हाँ, अविभक्ति वाले नहीं होगे, क्यों नहीं होगे? हाँ, अविभक्ति वाले होगे कि नहीं होगे? अविभक्ति वाले होगे कि नहीं, इतना ही प्रश्न है। हाँ, इतना ही। हाँ हाँ, तो क्यों होगे? तो उसका क्या है कि जो यहाँ क्षायिक हो गया है और बाद में जो वहां उत्पन्न हुए हैं, कृतकृत्य वेदक की बात आप सोचना मत इसमें, सभी कृतकृत्य वेदक अवस्था में मरकर वहां जाके क्षायिक हो गए, वो बात नहीं लेनी है। कृतकृत्य वेदक किसको कहना? जिसने क्षायिक का प्रोसेस शुरू किया है और अभी अंतर्मूर्त वाले वो सम्यक प्रकृति के निषेक बाकी है और अंतर्मूर्त में वो पूरा करने वाला है, और तभी उसकी अट्ठाईस की बात नहीं चल रही, सात की चल रही है, सात की, ये जो क्षायिक समय दृष्टि है सात की बात चल रही है, अकेला दर्शन मोहनी भी सात प्रकृति, अनंतानुबंधी चार और दर्शन मोह की तीन। हाँ, ये तो हो गया कायोगी वैक्रिक मिश्र कायोगी। अब संयतों में परिहार विशुद्धि संयत, तो परिहार विशुद्धि संयतों में विभक्ति वाले भी लिए साथ के और अविभक्ति वाले भी लिए, तो मेरा भी प्रश्न है परिहार विशुद्धि में, लक्ष्मी बेन आप जरा ध्यान दें, परिहार विशुद्धि में ये कौन से लिए? साथ की सत्ता वाले भी लिए और साथ की सत्ता से रहित भी लिए, हो सकते हैं ना, तो उनके कौन सा सम्यक तो होगा? सहित वाले में कौन सा होगा और रहित वाले में कौन सा होगा? रहित वाले में तो क्षायिक सम्यक्त के साथ जो, हाँ हाँ, तो औपशमिक सम्यक तो क्यों नहीं? छठा सातवा है, तो छठे सातवें में प्रथम औपशम के हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। आप क्या कहते हैं मैं भाई? परिहार विशुद्धि के साथ हमने चार बातें देखी थी, कि उसमें से हम नए लोगों को ही पूछेंगे अभी, हाँ, क्योंकि वहाँ कहते ना वृद्धों को नहीं, वृद्ध कौन से, जो ज्यादा जानते हैं ना उसको वृद्ध कहा तो देखो चार बातें एक साथ नहीं होती, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, परिहार विशुद्धि संयम, मन परे ज्ञान, और स्त्रीवेद, नहीं स्त्रीवेद नहीं, आहारक, आहारक, स्त्रीवेद वालों को वो नहीं होता है, मन तो आहारक, इसलिए मैंने ऐसा बताया, जिसको परिहार विशुद्धि है संयम, वो प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम वाले को नहीं है, किसके हो सकता है, वेदक सम्य दृष्टि के हो सकता है, क्षायिक के हो सकता है, आपने बराबर बताया था, परंतु तो इसीलिए मैंने जानबूझकर उपशम, हाँ, कौन कौन सी चार बातें एक साथ नहीं होती, परिहार विशुद्धि संयम, उसको आहारक नहीं होगा जिसके परिहार विशुद्धि है, मन परे ज्ञान, भले उसके वो क्षोपशम है परंतु उसका वो उपयोग रूप नहीं होगा उसको, और चौथी बात कौन सी बताई, प्रथमोपशम सम्यक, ओपशम सम्यक, तो प्रथमोपशम भी नहीं होता, द्वितीय ऑप्शन भी नहीं होता। अब कहते संयता संयत, पांचवा गुणस्थान है और सात के विभक्ति वाले भी है और अविभक्ति वाले भी है, सुनो, तो ये कौन से गति के जीव हो गए, पांचवा गुणस्थान है यानी उसमें विभक्ति वाले यानी सात की सत्ता वाले भी है, पांचवा गुणस्थान है सम्यक दृष्टि है ना, तो कौन सा सम्यक तो होगा उसको, सत्ता वाले को, पांचवा गुणस्थान है और जिनके ये चार की सात की सत्ता है, सत्ता की बात चल रही उदय की नहीं, जिसको सत्ता नहीं वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और जिसको सत्ता है वे कौन से हो गए सम्यक दृष्टि, क्षोपशम और उपशम का मालूम नहीं, आप क्या कहते हैं, हाँ बोलो आप, अभी बोलो आप, हाँ मौन तोड़ो, हाँ विनोद भाई ने मौन दे दिया उनको हाँ वेदक रहेंगे, आप क्या कहते हैं अरविंद भाई, दोनों है ना, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि के सत्ता में है ना अनंतानुबंधी और तीनों दर्शन मोहनीय, नहीं समझे, यहाँ सत्ता की बात चल रही उदय की नहीं, जब जीव किसी जीव को पांचवा गुणस्थान प्राप्त हुआ, तो पांचवा गुणस्थान प्राप्त हुआ तो उसके सत्ता में दर्शन मोहनीय है कि नहीं है, कौन कौन से दर्शन मोहनीय है, तीनों है, क्योंकि उपशम पहले किया तभी तो उसने मिथ्यात्व में से तीन प्रकृति बनाई, बनाए ने वो हो गई, और अनंतानुबंधी भी सत्ता में पड़ा है, तभी तो पांचवे में से कभी भी मिथ्यात्व में भी आ सकता है ना, सत्ता के बिना कैसे आएगा वो, उदय हुआ तभी आया, तो उदय कहाँ से हुआ, सत्ता में पड़ा था तभी तो उदय हुआ, तो औपशमिक सम्यक दृष्टि को भी सत्ता हो सकती है और वेदक को भी हो सकती है, जो क्षायिक है पांचवे गुणस्थान वाले उसको इन सात की सत्ता नहीं है। अब दूसरा प्रश्न, तो ये कौन से गति वाले जीव हो गए, बोलो आप क्या कहते हैं, पांचवा गुणस्थान, तिर्यंच में लेना कि नहीं लेना, आप कहते नहीं लेना, देखो तिर्यंच में एक क्षायिक समय दृष्टि जो होगे, हमें एक क्षायिक समय दृष्टि चाहिए, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ तिर्यंच में उत्पन्न हो गए तो कहाँ उत्पन्न होते हैं, भोग भूमि में, भोग भूमि में गुणस्थान कितने होते हैं, चौथे से ऊपर नहीं, तो पांचवे गुणस्थान वाले तिर्यंचों में क्षायिक सम्यक दर्शन कभी नहीं हो पाया जाएगा, वेदक सम्यक्त्व हो सकता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो सकता है, क्षायिक नहीं, तिर्यंचों में क्षायिक पाया जाता है तो भोग भूमि के तिर्यंच चौथा गुणस्थान ही रहेगा उनका, और उसके बाद कहाँ जाएंगे, कौन से देव में, हाँ सौधर्म ईशान में जाएंगे, हाँ ख्याल है ना, वो चलेगा नहीं, नहीं ध्यान है, सुनते हैं ना बार बार सुनेंगे तो ये बात ख्याल में आ जाएगी। हाँ, संयता संयत में जिसके सत्ता में है ये सात प्रकृति, ऐसे वेदक भी है और औपशमिक भी है, और जिनके सत्ता में नहीं वो कौन है, क्षायिक है। तो पांचवे गुण स्थान के साथ क्षायिक कहाँ हो गए, मनुष्यों में ही हो गए। सोचना ना, उन्हीं का सोचना है सत्ता में है कि नहीं है, उदय की बात नहीं चल रही है, सत्ता में पड़े हैं। अंतर्मूर्त के बाद एक समय के लिए भी होगा तो भी सोचना है, हाँ सत्ता में है कि नहीं है, उनका उपशम हुआ है ने दबे हुए हैं, तो दबे हुए तो सभी सत्ता में है और दबे हुए हैं। जब ये सत्ता में है तभी कहेंगे ना इनको दबा दिया, और क्षायिक में सत्ता में है ही नहीं है। अब आगे असंयत, अभी असंयत उसमें विभक्ति वाले साथ की बात चल रही है और अविभक्ति वाले, तो विभक्ति वाले अब बताओ कौन कौन से हो गए, वेदक हो गए कि औपशमिक हो गए, जिनमें वो साथ की सत्ता है। बोलो लक्ष्मी बेन। औपशमिक और वेदक दोनों हो गए, और जिनमें सत्ता नहीं है ऐसे क्षायिक हो गए, तो ऐसे कौन से गति में हो गए, असंयत कौन कौन से गति के असंयत है, वो क्षायिक समय दृष्टि हो सकते हैं, चारों गति में। आसान है ना ये, वेदक का ही अर्थ होता है संयोग क्षयोपशम। देखो देखो, क्षयोपशम और वेदक ये दो शब्द आते हैं, तो क्षयोपशम में क्षय और उपशम किसका है, सर्वघाती का। तो सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। ये सर्वघाती प्रकृतियां है, उदय में नहीं आ रही है, सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय आती है, तो उसको कहते उसका क्षय हो रहा है, और जो भविष्य में पड़े वो तो वहीं पर पड़े, उसको कहेंगे उपशम हो रहा है। और उदय किसका है, सम्यक प्रकृति का। तो उपशम क्षयोपशम की अपेक्षा मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षयोपशम हो रहा है, और उदय देशघाती का है, सम्यक प्रकृति का है, तो इनकी अपेक्षा से बात करना है तो कहेंगे क्षयोपशम सम्यक। और उदय रूप सम्यक प्रकृति जिसका उदय होता है उसका वेदक कहलाता है, तो सम्यक प्रकृति का उदय है यानी उसका वेदक है, इसलिए उस सम्यक्त को वेदक सम्यक्त कहते हैं। एक ही नाम, एक ही जो सम्यक्त है उसके नाम दो है, वेदक कहो या क्षयोपशम कहो, अर्थ एक ही है। क्षय यानी उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव, अपने रूप से उदय न होना परंतु खिर जाना, वो उदय में आ रहे है, उदय रूप अभी निषेक में आ रहे है, तो मिथ्या तो रूप से नहीं उदय में आ रहे, वो टर्न होते समय प्रकृति रूप से उदय में आ रहे हैं, उसी को कहते उदयाभाविक क्षय। और वर्तमान समय से ऊपर के जो निषेक है वो अपने रूप से पड़े हैं, हाँ, उनका सदवस्था रूप उपशम। ये अंतरकरण रूप जो उपशम होता है ना, अंतर किया और बाद में उपशम किया, जो कल बात निकली थी औपशमिक, आप थे कि नहीं थे, हाँ, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र की बात बहुत विस्तार से आई थी ना कल, हाँ शाम को, किसमें, दूसरे में के पहले में, दूसरे में, दूसरे लेक्चर में आई थी, हाँ हाँ हाँ। ये असंयत की बात समझ में, चारों गति में क्षायिक समय दृष्टि हो सकते हैं, और कृष्णादि पांच लेशा वाले जीवों के जानना चाहिए। कृष्णादि पांच लेशा वाले है, तो कृष्ण लेशा में कैसे समझना, देखो इसमें क्या लेना है, कृष्णादि पांच लेशाओं में इसमें विभक्ति वाले भी और अविभक्ति वाले भी। गति मार्ग देखो, कोई यहां उत्पन्न होता है ना, चौथे गुणस्थान तक तो छह लेशाएं पाई जाती है, तो पांच क्यों के लिए, छठी क्यों छोड़ी, कृष्णादि पांच ही क्यों लिए, ऊपर क्या लिखा है? हाँ अच्छा, 28 वालों में लिया इसलिए, बरोबर है, उनमें वो विकल्प था इसलिए इसको छोड़ा यहाँ पर। उनमें भी ये सात की सत्ता वाले बिना सत्ता वाले पाए जाएंगे, परंतु उनमें वो 28 वाला भी जीव लिया है, 28 की सत्ता वाले बिना सत्ता वाले में उनको ले लिया ना वहां पर उस लिस्ट में, इसलिए यहाँ नहीं लिया कहते विशेषार्थ। ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मार्गना स्थान गिनाए हैं, हाँ देखो शुक्ल लेशा में भी ये होगा, परंतु उनको वो 28 वाले के भेद में गिनाए हैं। 28 वाली अभी जो हमने लिस्ट देखी ना, 28 की 28 जिसमें पाई जाती है उसमें था उसको, इसलिए देखो 28 की सत्ता है, परंतु 28 के बिना सत्ता वाले कौन से लेशा में पाए जाएंगे ऐसा विचार करो। वही तो, अकेले शुक्ल लेशा में ही पाया जाएगा, अन्य लेशाओं में नहीं पाया जाएगा, नहीं समझे आप? देखो शुक्ल लेशा वाले में, शुक्ल लेशा वाला क्षायिक सम्य दृष्टि चौथा गुणस्थान हो कोई भी हो, तो उसमें तो सात का अभाव है, उसकी ना नहीं है। यहाँ क्या बात चल रही है, 28 की सत्ता वाला और बिना सत्ता वाला ऐसा जो भेद है 28 का, वो कौन से लेशा में हो सकता है? शुक्ल लेशा में ही होगा। हाँ कहाँ नहीं होगी, कौन से गुणस्थान में, कौन से ऊपर के, आठवें 28 के 28 का अविभक्ति वाला, सभी नहीं हो गए, ऐसा कौन से लेशा में हो सकता है? अकेले शुक्ल लेशा में, यहाँ केवल सात की है, इसमें भी शुक्ल लेशा वाले को इंक्लूड कर सकते हैं, पर वहाँ हमने पूरे 28 की बात अलग बताई थी, इसलिए यहाँ इसको नहीं लिया। 28 का अभाव वाले अकेले शुक्ल लेशा में ही पॉसिबल है, बाकी सात में तो उसको ले लो, उसकी कोई हर्जा नहीं है। क्या लाए? अभाव वाले कृष्ण लेशा मनुष्यों की अपेक्षा, मनुष्य तिर्यंच, हाँ मनुष्य तिर्यंच, चौथे गुणस्थान तक वहाँ भोग भूमि में, बरोबर है, तिर्यंच नहीं होगा। कपोत लेशा हो सकती। अरविंद भाई कहते हैं गति, ये लेशाओं में गति लगाओ, तो ये जो कृष्ण नील और कपोत लेशा, कृष्ण लेशा कहाँ हो सकती है? हम सामान्य बात करेंगे, नारकियों में होगी, नीचे के नरकों में, देवों में होगी कि नहीं होगी? सर्वथा नहीं होगी। कौन से? भवनत्रिक मिथ्या दृष्टि सासाधनों को तीनों लेशा हो सकती है अशुभ, मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त की बात, वही तो अपर्याप्त की बात चल रही है, और बाद में वहां पीत लेशा होती है। अब यहां तो विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले की बात चल रही है, अविभक्ति कहाँ हो सकती है? नहीं, अभी हमको क्षायिक सम्य दृष्टि को ही सोचना है, क्योंकि विभक्ति वाले तो सर्वत्र पाए जाएंगे, उसकी ना नहीं है। तो कृष्ण लेशा क्षायिक सम्य दृष्टि में कहाँ होगी? स्वर्गों में तो नहीं होगी, क्योंकि सम्यक के साथ वहां गए तो वहां कोई नहीं। तिर्यंचों में भी नहीं होगी, क्योंकि भोग भूमि में जाने के बाद उनको कपोत में जन्म लेंगे, सम्य दृष्टि भी तिर्यंच में जब जन्म लेते हैं तो कपोत लेशा में जन्म लेंगे, और वहां बाद में तो उनके तो शुभ तीन लेशाएं हो जाएगी। तो ये कृष्ण लेशा और क्षायिक समय दृष्टि मनुष्य में ही हो सकता है, मनुष्य में ही हो सकता है। सर्वार सिद्धि में भले 33 सागर तक शुक्ल लेशा है, यहां आता है तो अंतर्मूर्त में फिर वो पलटते पलटते कृष्ण तक भी पहुंच सकता है, इसलिए अरविंद भाई कह रहे हैं कि वो लगाओ। अब नील लेशा में, नील भी अन्यत्र नहीं पाई जाएगी, शायिक सम्यक्त के साथ हमें नील लेशा लेना है, क्योंकि नीचे के नरकों में सम्यक तो होता है परंतु वहां तो क्षायिक वाला कोई नहीं होगा, वेदक समय दृष्टि होगा, उपशमिक होगा, उनको सम्यक तो नहीं होता वो बात नहीं है। तो मनुष्यों में ही वो छह लेशा पाई जाती है। अब कपोत लेशा तीर्यंचर मनुष्यों में, तीर्यंचों में भी कभी, हाँ एक क्षायिक की बात चल रही है, हाँ अन्यथा वेदक समय दृष्टि को तीर्यंचों में भी छह लेशा हो जाएगी चौथे गुणस्थान तक, वो तो नारक में होती, वो तो सामान्य बात है। कपोतलेशा पहले नरक में वगैरह नीचे के थोड़े, फिर कपोतलेशा मनुष्यों में तो सर्वत्र पाई जाएगी और तीर्यंचों में भी छह लेशा पाई जाती है, ये तो सामान्य कथन हुआ। अब क्षायिक सम्यक्त के साथ कपोत कहाँ पाई जाएगी ये बात चल रही है। पहला नरक तीर्यंच अपर्याप्त अवस्था में और मनुष्यों में, ये लेशा का प्रकरण नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, छोड़ दो, हाँ ऑप्शन में रखना, हम पास हो जाएंगे। कृष्ण नील कपोत होगी ना, अभी तीन शुभ लेशा, नहीं नहीं हम बात लगा रहे हैं ना, तो क्षायिक सम्यक्तों के साथ कपोत लेशा, कपोत हो गई पीत लेशा, मनुष्यों में तो छह लेशा हो सकती है। हाँ तो देवगति में कहाँ पर, सौदर में ईशान और ऊपर जहां तक पीत है, फिर ऊपर पद्म और उसके ऊपर शुक्ल, भोग भूमि में तीर्यंचों में भी तीन शुभ लेशाएं पाई जाती है पर्याप्त अवस्था में। विशेषार्थ ऊपर सामान्य नारकी आदि जितने मार्गणा स्थान गिनाए हैं उनमें कम से कम 21 और अधिक से अधिक 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले जीव होते हैं। उसी का अर्थ किसी के साथ की सत्ता है, किसी के नहीं है। इसी दूसरे शब्दों में क्या बताए, किसी के 21 की सत्ता है, किसी के 28 की है। 28 के वो सात वे विभक्ति वाले हैं और 21 गिनाए वो सात से रहित है। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक छह पृथ्वियों के नारकियों के इसी प्रकार कथन करना चाहिए। कौन से, वो अभी नहीं निकाला है, अभी तो ये पहले में पहले सात की जहां सत्ता है नहीं है, एक एक को बात करेंगे ना, एक एक की लिस्ट अलग अलग बताएंगे। पर इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्व की अविभक्ति वाले जीव नहीं होते। कौन से, दूसरी पृथ्वी से लेकर नीचे के। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिमति भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ इन उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन छह क्यों लिखा, सात मिथ्यात्व को छोड़कर, अच्छा अच्छा मिथ्यात्व की अविभक्ति वाले जीव नहीं होते। इन उपर्युक्त मार्गणाओं में सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, अच्छा इन छह प्रकृतियों का अभाव हो सकता है। अभी मेरा प्रश्न है ये कैसे छह का अभाव होगा और मिथ्यात्व का अभाव नहीं पाया जाएगा। बोलो देवेंद्र भाई बोलो। बोल दो अरविंद भाई। हाँ उद्वेलना भी नहीं जमती, उद्वेलना तो मिथ्या तो प्रकृति में होती है। और जब अनंत आनंदी की विसंयोजना करता है तो वो बाकी तीन तो रहती है। देखो देखो यहाँ कुछ अलग बात कर रहे हैं। उपर्युक्त मार्गणा कौन कौन सी, अभी हमने जो कोई बातें देखी वहां पर, इनमें सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व कौन, अभी ये जो हमने ऊपर दो तीन देखी ना कि नीचे के नरक है और पंचेन्द्र तिर्यंच योनिमति है भवनवासी है व्यंतर ज्योतिषी, इनमें सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन छह प्रकृतियों का अभाव हो सकता है। एक जीव की नहीं बात, अन्य अन्य जीवों के नाना जीवों की अपेक्षा कैसे लगाना, किसी को अनंतानुबंधी का अभाव हो सकता है, किसको हो सकता है, जिसने विसंयोजना की, किसी के सम्यक मिथ्यात्व का अभाव हो सकता है। नहीं 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 नहीं, अकेले सम्यक मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, उद्वेलना दोनों की चालू की और अंत में क्या हो जाता है, अंतिम अंतर्मूर्त में पहले सम्यक मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है और मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रह जाती है, सम्यक प्रकृति का अभाव होता है। हाँ, तो सम्यक प्रकृति का अकेले ने अभाव किया और किसी ने दोनों का किया, ये तो हो सकता है। परंतु क्या लिखा, एक जीव के छह प्रकृतियों का अभाव नहीं होता, कोई सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का अभाव करता है, कब करता है, मिथ्यात्व में गया और उद्वेलना कर दी, उद्वेलना ने उल्टा संक्रमण, पहले प्रथम उपशम सम्यक प्राप्त किया था, दर्शन मोह के तीन टुकड़े हुए थे, फिर मिथ्यात्व में आता है तो अंतर्मूर्त में क्या होता है, इन दोनों की उद्वेलना होना शुरू हो जाता है। जब उद्वेलना खत्म होने को आती है तो क्या हुआ, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति टर्न हुआ पूरा पहले में, पहले फिर सम्यक मिथ्यात्व भी टर्न हो गया, अकेले एक मिथ्यात्व प्रकृति रह गई, ऐसे भी हो सकता है। या कोई अन्य जीव लिया वेदक समय दृष्टि, उसने क्या किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, तो उसके भी सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं रहा। अलग अलग जीवों की अपेक्षा ये बताया है, एक जीव में बताया नहीं, छह के एक जीव में हो ही नहीं सकता। आदि लिखा है ना, आगे जिसने सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी है उसके उक्त दो प्रकृतियों का अभाव होता है, ये अन्य जीव लिया, तथा जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना कर दी है उसके अनंतानुबंधी चतुष्क का अभाव हो जाता है। तो ये उद्वेलना करने वाला उसका विसंयोजना करेगा कि नहीं करेगा, उद्वेलना करने वाला मिथ्यात्व में है और विसंयोजना करने वाला तो सम्य दृष्टि करता है। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति काल में ही उक्त छह प्रकृतियों का एक साथ अभाव पाया जाता है। जो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने जा रहा है, यहाँ किस कहाँ की बात चल रही थी, दूसरे नरक से सातवें नरक, भवनवासी, फिर योनिमति वगैरह वगैरह, कि जहाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं पाए जाते हैं और ना ही कृतकृत्य वेदक अवस्था में वहां उत्पन्न कोई हो सकता है, इसलिए जो कृतकृत्य वेदक है तो उसने क्या किया है, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, वहां तो मिथ्यात्व का पहले नाश किया, फिर सम्यक मिथ्यात्व का किया, वे छह प्रकृति अलग है परंतु ये वो नहीं है। पर इन मार्गणाओं में क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं और न क्षायिक सम्यक दृष्टि ही इनमें उत्पन्न होता है, अतः इनमें उक्त छह प्रकृतियों का अभाव नाना जीवों की अपेक्षा जानना चाहिए। तात्पर्य है कि इन मार्गणाओं में अधिक से अधिक 28 और कम से कम 24 प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है। कौन कौन सी मार्गणा जरा हम फिर देखते हैं इसके। दूसरे से सातवें नरक तक के नारके, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमति, योनिमति है तो उसमें तो कोई शाही का कृतकृत्य वेदक नहीं उत्पन्न होगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, उनमें कोई सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता, परंतु वहां सम्यक तो प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो कर सकता है तो हाँ, तो 28 की सत्ता किसके होगी? पहले में पहले ये देखते हैं, एक बार सम्यक तो प्राप्त हो के मिथ्यात्व में भी चला जाए तो उसके 28 की सत्ता है, और जो अनादि मिथ्या दृष्टि उसके 26 की है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति उपशम सम्यक्त्व के काल में उसकी बनी है। तो ये सम्यक दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो, उसको 28 की सत्ता होगी, और 24 की किसके होगी? अनंतानुबंधी की विसंयोजना। विसंयोजना का अर्थ क्या है? जितना सारा सत्ता में पड़ा है सबका सब अन्य जो 21 प्रकृतियां उस रूप करते थे उसको कहते हैं विसंयोजना। सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं रहता, परंतु ऐसा जो मिथ्यात्व में चला जाता है, हो सकता है अभी विशुद्धि के काल में अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, बाद में परिणाम बिगड़े कि मिथ्यात्व में भी चला गया, दोबारा अनंतानुबंधी बांधता है, ऐसा कितने बार हो सकता है? पहले के असंख्यातवे भाग बार अनंतानुबंधी की भी विसंयोजना करता है। विसंयोजना करने के लिए दोबारा मिथ्यात्व में आएगा तभी दूसरी बार विसंयोजना करेगा ना। हाँ, जो समय दृष्टि है और जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है उसी के 24 की सत्ता होगी। हाँ, मिथ्यात्व में आने के बाद फिर अनंतानुबंधी बांधेगा, वो फिर 28 की होती है। या वो समय दृष्टि भी रहा वेदक समय दृष्टि, जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं की है, छठे गुणस्थान वर्ती भी क्यों ना हो, छठे सातवें, तो भी 28 की सत्ता वाले है ना वो। सत्ता की बात है, उदय की नहीं। अब पंचेंद्रिय, ये इतनी बात समझ में आई? ऐसा नहीं कहना कि मेरे कुछ ख्याल में नहीं, यानी ध्यान में नहीं रहता। ध्यान में नहीं रहता बस भूल जाओ, जब समझाया जब पढ़ते तो ख्याल में आता है कि नहीं, ये ऐसा क्यों लिखा है, ये समझ में आता है कि नहीं, इतना देखना है अभी तो। जिसके ध्यान में रहता है वो अच्छा है, नहीं रहता तो चिंता की बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या हमें ऐसा लगता है, इन्फीरियर लगता है कि हमें कुछ नहीं समझ में, ऐसा लगता है, वो बात नहीं। यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच ये लब्ध हुआ है, लब्धीय लब्ध्य करना उसको, ये जोड़ देना, पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्ध्य पर्याप्तकों में। अभी लब्ध्य पर्याप्तों में क्या हो सकता है वो बता रहे, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले दोनों ऑप्शन जहां जहां हो सकते हैं उसको बात बता रहे हैं। अभी लब्धि पर्याप्त कहने वो जो सम्यूर्छन जीव होते हैं, श्वास के 18वें भाग मरते, उसकी बात चल रही है। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि पर्याप्तकों में ये दो की सत्ता वाले जीव है, वो कौन से जीव हो गए? हाँ अशोक भाई बताओ, पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक कौन से हो गए? तिर्यंच या मनुष्य लब्धि पर्याप्तक हो गए, तो उनमें सत्ता वाले, ये दो की सत्ता वाले जीव कौन से हो गए बोलो? सादी मिथ्या दृष्टि, इन दो की सत्ता किसके हो सकती है? जिसने एक बार भी सम्यक तो प्राप्त किया है, और ये लब्धि पर्याप्त सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो ये कैसे मिथ्या दृष्टि होने चाहिए? सादी। और उनकी अविभक्ति वाले भी जीव कौन से हो सकते हैं? अपर्याप्तों में कौन जन्मेंगे? मिथ्या दृष्टि जन्मेंगे। अनादि मिथ्या दृष्टि है या उद्वेलना वाले है? ऐसा भी ले सकते हैं ना, जिन्होंने उद्वेलना कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पूरी नहीं समझे, देखो ऐसे भी जीव है कि ने एक बार सम्यक तो प्राप्त किया और वो अर्ध पुद्गल परावर्तन का उनका घूमना चल रहा है, तो कौन सी अवस्था में हो गए? ये अकेले एक मिथ्यात्व की प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति वो सब उनका उद्वेलित हो गया है, वो अनादि जैसे हो गए हैं। कहेंगे सादी, क्योंकि एक बार उन्होंने कभी सम्यक तो प्राप्त किया था और वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी अभी निगोद में भी चल जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? एक बार मिथ्यात्व में गए तो कहीं भी जा सकते हैं, तो ये तो उद्वेलना पूरी हो गई, या जिसने अभी कभी पाए ही नहीं सम्यक, उसके भी 26 की सत्ता है। तो यहाँ यही बात कहते, कोई तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले भी हो गए और बिना सत्ता वाले भी हो गए। पंचेंद्रिय लब्धियां पर्याप्त के लिए है, मिथ्या दृष्टि ही होते हैं वे लब्धियां पर्याप्तकों में, तो मिथ्या दृष्टि ही जन्मते हैं। क्यों नहीं होगे? हाँ, फिर इसी प्रकार लब्धि पर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, ये रह गया जब जहाँ वहाँ। लब्धि पर्याप्त मनुष्य सभी एकेंद्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, सभी विकलेंद्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त, पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त की यहाँ बराबर लिखा, वहां तीरंच लब्धि पर्याप्त लिए थे, यहाँ पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त लिए। पांचों स्थावर काय और उनके बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त अपर्याप्त, त्रस लब्धि पर्याप्त, यहाँ भी ये लगाऊं। मति अज्ञानी, मत्य ज्ञानी ने मति अज्ञानी, श्रुता ज्ञानी ने श्रुता अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंगी, सके ऊपर बिंदी लगाना, जीवों के कहना चाहिए। अब उसका विशेषार्थ, उपर्युक्त मार्गणा स्थानों में सादी मिथ्या दृष्टि होते हुए जिन जीवों ने सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी है, उनके इन दो प्रकृतियों का अभाव होता है, यानी जिन्होंने अभाव किया है ऐसी बात वहां ली है, जिनके कभी नहीं था उसकी बात यहाँ नहीं ली उन्होंने, जिनके है और जिन्होंने अभाव किया ऐसे बातें यहाँ ली, तो सादे मिथ्या दृष्टि हो गए। तथा जिन जीवों ने इन दो प्रकृतियों के उद्वेलना नहीं की है, उनके इनका सत्व होता है। इस प्रकार उपर्युक्त मार्गणाओं में 26 और 28 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। ये बात ख्याल में आई? हाँ, सादी, क्योंकि जिनके सत्व था और जिनका अभाव हो गया, सत्व के पूर्व का अभाव क्या, इसे जीवों को लिया यहाँ पर। आहारक काय योगी और आहारक मिश्र काय योगी जीवों के प्रकृतियों का सत्व पहली पृथ्वी के समान कहना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार पहले नरक में दर्शन मुनि की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इन 7 प्रकृतियों का सत्व है और नहीं भी है, तथा शेष 21 प्रकृतियों का सत्व ही है, उसी प्रकार उक्त दोनों कायोगी जीवों के जानना चाहिए, यानी इनमें इन दो में क्षायिक समय दृष्टि हो सकते कि नहीं हो सकते? आहार कायोगी और छठे गुणस्थान की बात चल रही है, तो वहां क्षायिक भी हो गए और अन्य भी हो गए, तो यहाँ कौन सा वाला वो लेना, लिस्ट दूसरी, जहाँ वो 7 की, यानी वहां 28 की सत्ता वाले भी हो सकते हैं और 21 की भी हो सकते हैं। बिना 28 की सत्ता वाले इसमें हो गए कि नहीं हो गए? 28 के 28 का जहाँ क्षय हो गया, उनके आहार काय होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता, इसलिए इनको किसके साथ लिया, वो पहले नरक वाली जो लिस्ट थी उसके साथ इसको लिया, जब हमने कृष्णादि 5 ही लेशाएं देखी थी। क्यों? शुक्ल लेशा वाले में तो 28 की सत्ता वाला भी है और बिना सत्ता वाला भी विकल्प है, उसको नहीं लिया यहाँ पर। यहाँ वो केवल 7 की सत्ता वाला और बिना सत्ता वाला, यही विकल्प यहाँ पॉसिबल है। ये तो हो गया, दोनों का जानना चाहिए। स्त्री वेदी जीवों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, संज्वलन 4 के बिना शेष 12 कषाय, नपुसक वेद, इन 16 प्रकृतियों के विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव हैं। क्या कहना चाहते हैं? इनके बिना और इनके सहित। देखो, जब स्त्री वेद वाले जब कह रहे हैं तो स्त्री वेद वाले हैं, तो उसमें अपगत वेद वाले भी ले सकते हैं, या स्त्री वेद होते हुए, स्त्री वेद का उदय होते हुए जहां अन्य इन प्रकृतियों का क्षय हुआ है, ऐसा जीव लेना है। देखो, अभी हमने आहारक की जब बात की थी, वो छठे गुणस्थान की बात है, बराबर है ना? तो छठे गुणस्थान तक कितने प्रकृतियों का क्षय भी, और बिना बिना क्षय तो सभी हो सकते हैं, तो सात के बिना वाला ही विकल्प हो सकता है। छठे गुणस्थान में उससे अधिक प्रकृतियों का क्षय नहीं पाया जाता। अब यहां ऐसा लिया है, स्त्री वेद का उदय कहां तक है? नौवे तक है। तो नौवे तक ऐसे जीव लेना है कि विभक्ति वाले भी है, और वहां कौन से ऐसे कर्म है कि जिनका स्त्री वेद होते हुए भी क्षय पाया जाता है? तो कहते हैं पहले में पहले मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, चार इतने तो समझ सकते हैं। जिन्होंने क्षायिक समय दृष्टि है, ऐसे जो है 21 की सत्ता थी, अब वो श्रेणी चढ़ रहे हैं क्षपक श्रेणी, तो उसमें और किसका क्षय करेंगे? पहले आठ मोनी की बात करनी है ना अपने को, हाँ, प्रत्याख्यान और अनप्रत्याख्यान, यानी वो आठ लिए, इसलिए संज्वलन के बिना 12 लिए। संज्वलन है सत्ता में, नहीं नहीं नहीं, देखो किसकी सत्ता नहीं है? देखो, मिथ्यात्व की नहीं, सम्यक प्रकृति की नहीं, सम्यक मिथ्यात्व की नहीं, संज्वलन छोड़कर अन्य 12 की नहीं, ऐसा लेना। 12 की बिना सत्ता वाला, सत्ता वाला और बिना सत्ता वाला, और नपुसक वेद इसको भी छोड़ा, 4 की सत्ता है, 12 की नहीं है, ऐसा हो सकता है ना? अब नपुसक वेद को भी, क्योंकि जब क्षपणा होती है तो पहले में पहले नपुसक वेद सत्ता में से नष्ट हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है, फिर भी अभी स्त्री वेद बाकी है कुछ छोटे अंतर्मुख के लिए। तो कहते हैं ये जो 16 प्रकृतियां हैं, पहले 7 तो क्षायिक समय दृष्टि थे, तो 7 तो चले गए थे, 7 और 8 कषाय वो गए, क्षय हो गया, और फिर जब 9वें गुणस्थान में, उसके ये 9वें गुणस्थान में एक क्षय का प्रोसेस चलता है, तो 8 कषायों के बाद वहां अन्य 13 का होता है, परंतु वो नाम की 13 और दर्शन मुख की 3 जाती है। मोहनीय से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं ली। मोहनीय में से कौन सा क्षय होता है श्रीवेद के पहले? तो नपुसक वेद का। तो इसीलिए यहां 16 की सत्ता वाले भी है श्रीवेद के साथ, और बिना सत्ता वाले भी है। 21 गुणस्थान में पॉसिबल है, 9वें गुणस्थान में नपुसक वेद का क्षय होने के बाद जब तक स्त्री वेद का उदय है वहां की बात चल रही है। ये तो यहाँ लिखा नहीं है, या आगे लिखा होगा तो पता नहीं है, तो हम इस वर्ष से डिराइव करेंगे। तथा 4 संज्वलन, 6-9 कषाय, पुरुष वेद और स्त्री वेद इन 12 प्रकृतियों के विभक्ति वाले ही है। जब ये 16 वाले नहीं है, 28 में से 16 नहीं है, तो कौन से है? 12 है। तो 12 में कौन कौन से है वो बता रहे हैं। तो 4 संज्वलन है, 6-9 कषाय है, पुरुष वेद है, जो जब स्त्री वेद है तो पुरुष वेद है ही, इन 12 प्रकृतियों के विभक्ति वाले ही है। अब पुरुष वेदियों में घटाना है, तो पुरुष वेदियों में अभी विभक्ति वाले तो अन्यत्र सर्वत्र घटित हो जाएगा, मिथ्यात्व गुणस्थान में भी वो विभक्ति वाले कहेंगे, परंतु अभी यहाँ मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, संज्वलन 4 के बिना शेष 12 कषाय, यानी 12 कषाय, और पुरुष वेद के बिना 8-9 कषाय। पुरुष वेद रखा, देखो नपुसक वेद गया, स्त्री वेद गया, और फिर 6-9 कषाय भी गए वहां पर, पुरुष वेद रहा और संज्वलन 4 रहे। इन 23 प्रकृतियों के विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले हैं। पहले स्त्री वेद गए जाने के बाद श्रीवेद के साथ 12 रहे थे, श्रीवेद जाने के बाद 11 रह जाते हैं, 11 में से फिर 6 नौ कषाय पहले चले जाते हैं, तो 11 में से 5 रहे, तो पुरुष वेद अभी है। तो पुरुष वेद सहित कितने नहीं है? 23 नहीं है, और कितने हैं? 5 है, एक पुरुष वेद और 4 संज्वलन। तो पुरुष वेदियों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, संज्वलन 4 के बिना शेष 12 कषाय, और पुरुष वेद के बिना 8-9 कषाय, मैंने हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, नपुसक वेद और स्त्री वेद, ये तो चले गए। इन 23 प्रकृतियों के विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव हैं। जब तक क्षय नहीं हुआ था, क्षायिक समय तो जिसके नहीं है उसके इन सब की सत्ता है, और अभी ये जो पुरुष वेद की जिसकी अभी क्षपणा नहीं हुई है, ऐसा क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ जो है, स्त्री वेद के और 6-9 कषाय की भी क्षपणा कर दी है, ऐसा जीव है, वो इन 23 से रहित है। हाँ, 23 से सहित है ना, वो 28 से सहित है, क्योंकि हमने ये सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व लिया है, तो 28 की वाला है वो, रहित और सहित ऐसा दोनों ये पुरुष वेद को कहा है, ऐसा लेना है। यानी ऐसे लेने हैं। अभी पहला हमने लिस्ट कौन से देखी, 28 की सत्ता सहित और 28 की सत्ता रहित, फिर 21 की सत्ता सहित और रहित, 24 की सत्ता सहित और रहित, ऐसे हम देख रहे हैं ना, एक 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 एक। अब यहाँ कौन से देखे हमने, स्त्री वेद, हाँ स्त्री वेद के साथ हमने क्या देखे थे, वो 12 की सत्ता सहित और रहित, ऐसे भी लिए हमने। हाँ हाँ, तो ये 5 की सत्ता सहित रहित लेके नपुसक वेदियों में, फिर से देखो, पुरुष वेद का जब क्षय होता है उसके पहले देखो, जब हाँ पहले नपुसक वेद का क्षय हो जाता है, फिर स्त्री वेद का होता है, उसके बाद 6-9 कषायों का होता है, हाँ, और बाद में पुरुष वेद का होता है। इसलिए पुरुष वेद का जब सत्ता है तब अन्य सभी चले गए, एक पुरुष वेद और 4 संज्वलन रह गए। अब नपुसक वेदियों में, नपुसक वेद की जहां सत्ता है वहां स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, हाँ। तो नपुसक वेदियों में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, 4 संज्वलन के बिना 12 कषाय, और स्त्री वेद, ओ स्त्री वेद को वो पहले, उसका उदय है ना, तो ये स्त्री वेद को पहले की पाता, एक साथ हो जाते। इन 16 प्रकृतियों के विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव है। देखो, जो नपुसक वेद सहित चढ़ता है श्रेणी, तो जिस पोजीशन में अन्य जीवों का नपुसक वेद क्षपणा होती है ना, हाँ, और फिर बाद में जहाँ स्त्री वेद की क्षपणा होती है, तो यहाँ वो उसकी स्त्री वेद की पहले क्षपणा होगी और बाद में नपुसक वेद की। तथा 4 संज्वलन पुरुष और नपुसक, ये 2 वेद, यानी अभी उसने स्त्री वेद की क्षपणा की है और नपुसक वेद उसका बाकी है, और सत्ता में पुरुष वेद भी पड़ा है। सत्ता में उदय किसी एक वेद का होता है, परंतु सत्ता में तो तीनों वेद के परमाणु पड़े रहते हैं। तो ये 2 वेद अभी पुरुष वेद के नहीं, नपुसक वेद की क्षपणा नहीं हुई है, तो 6-9 कषाय भी है अंदर पड़े हुए। तो 6-9 कषाय इन 12 प्रकृतियों के नियम से विभक्ति वाले जीव है। यानी जहां 16 के विभक्ति अविभक्ति बताइए, उस हाँ देखो, जो पुरुष वेद सहित श्रेणी चढ़ता है उसके पहले नपुसक वेद क्षय हो जाता है, बाद में स्त्री वेद और बाद में पुरुष वेद। जो स्त्री वेद सहित चढ़ता है उसके भी पहले नपुसक वेद नष्ट होता है, फिर स्त्री वेद, बाद में पुरुष वेद। परंतु जो नपुसक वेद सहित चढ़ता है उसके पहले स्त्री वेद नष्ट होता है, बाद में वो अपना उसका नपुसक वेद, बाद में पुरुष वेद। तो पुरुष वेद जहां नष्ट होता है उसके पहले 6-9 कषाय उसके पहले के नष्ट हो जाते हैं। हाँ, सत्ता की ही अपेक्षा है, क्योंकि ये इसका उदय नष्ट हो जाएगा और अन्य का उदय शुरू होगा, ऐसा कभी नहीं बनता। जिस जीव का जन्म से जो भाव वेद का उदय है वही चलता है उसका थ्रू आउट लाइफ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु सत्ता में जो परमाणु पड़े हैं उनका किस पोजीशन पर नाश होता है उसकी बात है। देखो हम देखते नहीं, वो दस दस भवन तक वो सम्यक तो चला रहा है उसका, तो क्या होगा उसकी सत्ता में होगी कि नहीं? नपुसक वेद के स्त्री वेद के परमाणु वो अंदर कितने ही वो भवन से सागरों से बंधे हैं ना, तो पड़े हैं अंदर। तो जहां वो 16 की विभक्ति और अविभक्ति वाले देखे नपुसक वेदी के, तो उसके सत्ता में कितने हैं? तो 4 संज्वलन है उसके, पुरुष नपुसक वेद है और हास्यादि 6 नौकशा है। वो 12 प्रकृतियों के विभक्ति वाले हैं, जो जो नपुसक वेद वाले हैं जिन्होंने स्त्री वेद तक की क्षपणा कर दी है, उनमें सत्ता में अभी कितने बाकी हैं? 2 वेद, 6 नौकशाए, 8 हो गए, 4 संज्वलन, 12, ये वो भी सत्ता में है। अब अपगत वेदी हो गए हैं, जो वेद नष्ट हो गया, वो 24 प्रकृतियों के विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव हैं। पर अनंतानुबंधी चतुष्क की विभक्ति वाले जीव नियम से नहीं है, वहां अनंतानुबंधी की सत्ता वाले नहीं है। अपगत वेदी जो है श्रेणी चढ़ते हैं, ये सत्ता वाले की बात चल रही है। हाँ, ये जो क्षायिक समय दृष्टि लेना कि नहीं लेना, इसमें 24 की सत्ता में क्षायिक समय दृष्टि को लेना कि नहीं लेना? नहीं लेना। हाँ, क्योंकि उसके अगर दर्शन मोहिनी की 3 है, गिनी है यहाँ पर, तो जिसके अनंतानुबंधी की विषय योजना करके जो श्रेणी चढ़ा है उसकी जीव बात है यहाँ। तो वहां 24 की सत्ता वाला भी है और बिना सत्ता वाला भी है। अपगत वेदियों के समान अकषाय और अयथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए। अब इसको समझाएंगे। 24 की सत्ता वाला भी और बिना सत्ता वाला भी। 24 की अविभक्ति वाले, देखो 24 की विभक्ति वाले जब कहेंगे तो जिन्होंने अनंतानुबंधी की विषय योजना की है, और 24 की अविभक्ति वाले ने कैसे समझना? 24 की अविभक्ति यानी 4 बाकी है। कौन से 4 बाकी? हाँ, ऐसा हो सकता है ना? हाँ, ऐसा हो सकता है। विशेषार्थ क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के, ये वेद की वगैरह बात समझा रहे। स्त्री वेद के उदय विच्छित्ति के पहले, उदय की विच्छित्ति ने उदय का अभाव होना, विच्छित्ति ने उसका अभाव होना, 4 संज्वलन, हास्यादि 6 नौकशाएं, पुरुष वेद और स्त्री वेद, इन 12 प्रकृतियों को छोड़कर शेष 16 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। क्षपक श्रेणी की बात चल रही है यहाँ पर। पहले लिखा क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए स्त्री वेद की जहां विच्छित्ति नहीं हुई उसके पहले पहले की बात है। तो ये 12 बाहर हुआ है, 12 करना। इन्हें कौन से 16 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है? क्षपक श्रेणी पर कौन चढ़ता है? क्षायिक समय दृष्टि, तो 7 का तो वहां क्षय हो चुका है। उसके बाद 8 जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आवरण, वो 8 का क्षय हो जाता है। 7, 8, 15 हुए। फिर नपुसक वेद का क्षय हो गया, 16 हो गया, क्योंकि अभी स्त्री वेद का उदय चल रहा है। ये ऐसा जीव लिया, तो 16 का क्षय हो गया, अभी 12 बाकी है। तो कौन से 12 है? तो स्त्री वेद तो है ही, क्योंकि उदय चल रहा है, 4 संज्वलन है, 6 नौकशा है, और पुरुष वेद अभी सत्ता में पड़ा है। तो 12 प्रकृतियों को छोड़कर शेष 16 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। अतः स्त्री वेदी के उक्त 12 प्रकृतियों का सत्व नियम से है, तथा शेष का सत्व है और नहीं है। इसी प्रकार है और नहीं है ने हमने उसमें देखा ना, स्त्री वेद सहित सत्ता वाले भी है, और स्त्री वेद सहित बिना सत्ता वाले भी, जिन्होंने क्षय किया वो बिना सत्ता वाले। इसी प्रकार नपुसक वेदी के जानना चाहिए। पर नपुसक वेदी में हमने देखा था, जहां नपुसक वेद की उचित्य नहीं हुई उसके पहले स्त्री वेद चला जाता है। तो इतनी विशेषता है कि नपुसक वेदी के स्त्री वेद के स्थान में नपुसक वेद का सत्व कहना चाहिए। जो पुरुष वेदी श्रेणी चढ़ता है तो ये उसका नपुसक वेद का क्षय करने का स्थान है, ये स्त्री वेद का क्षय करने का स्थान है, और ये पुरुष वेद का क्षय करने का स्थान है। तो जो स्त्री वेदी है वो तो यहाँ इसका क्षय कर देता है, परंतु जो नपुसक वेदी है उसका क्षय यहाँ नहीं पूरा होता, तो उसका क्षय ऊपर तक चलता है, ऊपर तक उसकी सत्ता रहती है उसका क्षय, क्योंकि वो नपुसक वेद के उदय से ही चढ़ रहा है श्रेणी। यही बात यहाँ क्या कही, देखो इतनी विशेषता है कि नपुसक वेदी के, नपुसक वेदी ने जो नपुसक वेद का जिसके उदय है उसके स्त्री वेद के स्थान में नपुसक वेद का सत्व कहना चाहिए, उसकी सत्ता भी है वहां पर। पुरुष वेदी के पुरुष वेद का उदय रहते हुए 4 संज्वलन और पुरुष वेद का क्षय नहीं होता, जब तक वो पुरुष वेद का उदय है तो 6 नौकषाय का तो क्षय हो गया है, परंतु अभी एक पुरुष वेद और 4 संज्वलन बाकी है, शेष का हो जाता है, यानी उसके 5 की सत्ता है और बाकी 23 की सत्ता नहीं है। अतः पुरुष वेदी के उक्त 5 प्रकृतियों को छोड़कर शेष 23 प्रकृतियों का सत्व है भी और नहीं भी है, यानी दोनों विकल्प उसमें हो सकते हैं। हाँ, स्त्री वेद का क्षय करेगा, यहाँ लिखा ना, अभी हमने पढ़ा ना, नपुसक वेदी के स्त्री वेद का सत्व पाया जाता है। देखो 16 प्रकृतियों के विभक्ति वाले भी और अविभक्ति वाले भी, नपुसक वेद में अभी हमने देखा वो सत्ता में अभी है उसके। हाँ, ये कर्मकांड में उसके सारे 4 बताए थे, याद है आपको? कर्मकांड निकाल के देखना जरा, कौन से उदय सहित चढ़ता है और वहां कहां किसका क्षय हो जाता है। कर्मकांड में था या उस कर्मकांड में ही था वो, हाँ, क्षपणासार में तो कुछ 41 पेज मुझे याद है, भी कौन से पुस्तक की बात नहीं। हाँ, टेबल है वो, 41 पृष्ठ पर उसका टेबल है, 41 पृष्ठ पर उसका टेबल था। देखना भी जाके। हाँ, अभी आगे 23 का सत्व है भी नहीं भी है, पर उक्त 5 प्रकृतियों का सत्व नियम से है। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर जो जीव अपगत वेदी हो जाता है उसके 4 अनंतानुबंधी को छोड़कर शेष 24 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। अतः अपगत वेदी जीव के अनंतानु रह गया, अनंतानुबंधी 4 को छोड़कर शेष 24 प्रकृतियों का सत्व है भी और नहीं भी है। पर 4 अनंतानुबंधी का सत्व नियम से नहीं है, अन्य 24 का है भी और नहीं भी, ऐसे दोनों विकल्प हो गए, 4 का नहीं है। अकषाय और यथाख्यात संयतों के अपगत वेदियों के समान जानना चाहिए, अकषायों में भी ऐसा ही जानना चाहिए। अकषायी कहेंगे तो अकषायी कौन से गुणस्थान? हाँ, ग्यारहवें गुणस्थान में वो 24 की सत्ता वाले है कहेंगे, और अकषायी 12वें में भी है, 13वें में, वो तो सबकी सत्ता से रहित है। यथाख्यात संयतों में भी वो 11वें 12वें की अपेक्षा अलग हो सकता है कथन। अब कषायानुवाद की अपेक्षा, कषाय मार्गणा की बात है, क्रोध कषाय वाले जीवों के पुरुष वेदियों के समान कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ये पुरुष वेद की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्रोधी जीव जब कहेंगे तो सामान्य पे क्रोधी कहाँ से? पहले गुणस्थान से है, तो उसकी तो बात है, वो तो सारे विभक्ति वाले ही है। परंतु यहाँ ऐसे क्रोध लेना, क्रोध का उदय है और पुरुष वेद तक के सबका क्षय कर दिया है। नौवे गुणस्थान में अभी हमने लिस्ट देखी, नपुसक वेद का क्षय हो गया, स्त्री वेद का हो गया, पुरुष वेद का हो गया, नौ कषाय का हो गया, अब क्रोध का भी हो गया, तो क्रोध ही नहीं कहेंगे है? क्रोध का उदय है तो पुरुष वेद तक के सभी प्रकृतियों का क्षय हो गया। क्षायिक समय दृष्टि है, सात चले गए, फिर नपुसक वेद, स्त्री वेद, छह नौ कषाय और पुरुष वेद सबका क्षय हो गया। अब क्या बाकी रहा? चार संज्वलन बाकी रहे। यानी पुरुष वेद की विभक्ति वाले भी पाए जाएंगे और बिना विभक्ति, पुरुष वेद का अभी सत्ता है, बाकी सबका नष्ट हो गया, और फिर अपगत वेदी हो गए तो पुरुष वेद का भी क्षय हो गया। इसी प्रकार मान कषाय वाले जीवों की जानना चाहिए, क्रोध का जो क्षय हो जाता है उसके बाद मान का क्षय हो जाता है, उसमें भी यही बात होगी। इतनी विशेषता है कि मान कषाय वाले जीव क्रोध कषाय की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले हैं, उसमें क्रोध सहित भी जीव है, क्रोध रहित भी है। इसी प्रकार माया कषाय वाले जीवों के कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि माया कषाय वाले जीव मान कषाय की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले होते हैं, कि जिन्होंने क्षय किया है और भी क्षय करना बाकी है, ऐसे दोनों उसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार लोभ कषाय वाले जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि लोभ कषाय वाले जीव माया कषाय की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले हैं। इसी प्रकार सामायिक छेदोपस्थापना संयत जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थान नौवे गुणस्थान तक है, तो उस मार्गणा भी यही कथन होगा। इसका विशेषार्थ कल देखेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। दूषित।